Welcome learners, today we are going to discuss about on a topic that is Cartesian system of coordinate geometry at senior secondary level. And in your earlier class, means from the beginning, that is from primary, you are well acquainted with geometry. As a geometry, we know that geo plus metry means measurement of earth. And now we are going to just extend the geometry part, that is coordinate geometry, and or also we will be extend, that is Cartesian system of coordinate geometry. Sir, I welcome to our program.
Thank you, sir.
At beginning, I would like to ask you that एक geometry है, एक coordinate geometry है, जहाँ पर geometry का meaning मैं बता दिया पहले, जे measurement of earth, ये बात उनको पहले से पता है, and उसको ऊपर भी बहुत कुछ पढ़े ये सेकेंडर लेवल में. अभी जब हम डिस्कशन करने जा रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनका मीनिंग कैसे है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्री पार्ट एंड पर्टिकुलरली इट्स इम्प्लीकेशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, द इम्प्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, दैट वी हैव टू डिस्कस दिस पार्ट, देन विल वी डिस्कस द प्रॉब्लमेटिक पार्ट.
सी, अब तक जो भी ज्योमेट्री लर्नर्स ने पढ़ी है, that geometry is basically, we say that is Euclidean geometry. That geometry was basically written or started by a Greek mathematician Euclid. And initially, this whole of the geometry that was based on certain assumptions, whether they were postulates or some of the assumptions made by Euclid. And on the basis of these assumptions, whole of the geometry was lying, which we say Euclidean geometry, or what you have said, geometry as you have explained, that measurement of earth. Measurement of earth is a very wide term, but in geometry, learners have dealt already with different type of figures, like line, point, triangle, circle, etc., and different theorems which were belonging on that. But the basically, when the geometry, that geometry was started, it was started with an assumption by Euclid, and that assumption was point. So
yes.
Point ko locate karne ke liye, ye Euclid ka ek assumption tha ki ye ek dimensionless assumption hai, jo kisi bhi cheez ki location ko locate karne ke liye hum assume karte hain. In the same way, the whole of the geometry, which we say nowadays Cartesian geometry or coordinate geometry, it is different on the basis of this assumption. In France, when the famous French Revolution was there was one of the philosopher, René Descartes, who was also a mathematician. He represented this point in a different way. This assumption was made in a different way. The point was represented in a different way, and in the name of Descartes, means it is written in English as Descartes, D-E-S-C-A-R-T-E-S. So Cartes is taken from the name of Descartes, and this geometry was named after him,
Cartesian geometry. System of coordinate
geometry. Because in this system, Descartes represented the point in entirely in a different way in comparison of as Euclid have done.
So, ye overall ye difference ho sakta hai ki hum ek refinement geometry ka refinement, or we can say extend part of geometry, we are now reach the Cartesian system of coordinate geometry.
हाँ, ये एक बिल्कुल different type की geometry है उस तरह की geometry से जो Euclid की geometry थी, क्योंकि what Descartes did, Euclid ने एक plane के अंदर point की को एक location को identify करने के लिए एक dimensionless aspect को point की तरह से assume किया था. वहीं Descartes ने क्या किया कि उसने पूरे plane को 4 equal parts में divide किया, and on the basis of these 4 division of a plane, he located a certain point or defined that point, which was assumed by Euclid in a different way using coordinates. And that's what the geometry is called, coordinate geometry also. We also call that a coordinate geometry. It is entirely different. And using this different type of representation, what Descartes did, he proved all the theorems which were existing in Euclid's geometry using this representation also. Euclid ki geometry mein jitni bhi theorems thi, Descartes ne is point ke different representation ko use karte huye bhi un sari theorems ko prove kar diya. Aur ek dusre tarah ki geometry existence mein aa gayi, जिसको बाद में कार्टिजन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम दिया गया, और इस ज्योमेट्री से बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना, बहुत सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को स्टडी करना कंपेरेटिवली ज़्यादा एनालिटिक था कंपेरेटिवली टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एंड देन इट वॉज फ्लोरिस्ट इन दैट डिफरेंट।
अगर हम देखेंगे उनका इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, क्या क्या हम पर हम यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स, हाउ यूजफुल दिस कॉन्सेप्ट।
देखिए इसके बहुत वाइड इम्प्लीकेशन हैं। एक तो बहुत सारी फिगर्स ऐसी हैं जितने भी कॉनिक सेक्शंस हैं, कोन के जितने भी पार्ट बनते हैं, वो सबके सब एक एल्जेब्राइकल इक्वेशंस के थ्रू इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, या जो अलग और कॉनिक सेक्शन है, वो सबके सब
पैराबोला हाइपरबोला,
यस यस, एल्जेब्राइकल इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और कहीं भी जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इस एक्यूरेटली लोकेट करने की बात होती है, तो इस कोऑर्डिनेट को, पॉइंट को प्लेन के अंदर यूज किया जाता है। आप कभी भी देखेंगे
इन टू डायमेंशनल प्लेस और थ्री डायमेंशनल प्लेस, बट द पॉइंट इज देयर, वी कैन आल्सो फाइंड आउट बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
पॉइंट को लोकेट करना विद एक्यूरेसी इसका सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। आप कभी देखेंगे, जैसे कई बार हम देखते हैं कि अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में कई बार ऐसा सुनने में आया है कि जंगलों में बड़े लार्ज स्केल पर आग लग गई। बहुत लार्ज स्केल पर मींस कई बार ऐसा होता है कि फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है, तो उस आग को बुझाने के लिए वहां पे बॉम्बिंग की जाती है, इस तरह के बॉम्ब्स गिराए जाते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो आग बुझ जाती है। तो उसके लिए उन जो भी वो बॉम्ब्स गिराने वाले हैं, उन पायलट्स को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां वो बॉम्ब ड्रॉप करना है, एक बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो उसको हिट करने में उनको बाकायदा इसी ज्योमेट्री को, लोकेशन का जो कार्टिजन सिस्टम जो है, इसी को यूज करके उनको लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। या वैसे भी कभी भी आप देखेंगे जब जैसे गेम्स होते हैं या टेलीविजन पर या कंप्यूटर पर, कई बार इस तरह से दिखाया जाता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करना है हिट करने के लिए, तो हमेशा उसको आप देखते हैं कि वो चार इक्वल पार्ट्स में दो वर्टिकल लाइंस क्रॉस करते हुए होती हैं, उससे वो डिवाइड होता है और फिर उस पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट किया जाता है कि कैसे उस पॉइंट पे पहुंचा जाए,
इंटरसेक्टिंग पॉइंट
को। तो दैट वॉज ए वेरी यूनिक फीचर और इम्प्लीकेशन ऑफ दैट। एंड अपार्ट ऑफ दैट, बहुत सारी जो ये फिगर्स हैं इस तरह की पैराबोला या ये, इनके बहुत बहुत सारे ऐसे यूज हैं। जैसे आप, हम अपना डिश एंटीना यूज करते हैं डीटीएच का, तो हम देखते हैं हमेशा वो एलिप्टिकल शेप में होता है, ओवल शेप में होता है, क्योंकि ओवल शेप वो शेप होती है जो सिग्नल्स को पिकअप करने के लिए सबसे, उसको फोकस करने के लिए सबसे बेहतर उसका इस्तेमाल होता है। या कई बार हमने देखा होगा जो मेडिकल साइंस में जैसे स्टोन होते हैं, उन स्टोन्स को आइडेंटिफाई करके या उनको क्रैश करना होता है एक्सरेज की हेल्प से, तो यही उसको उसी तरह से इलिप्स के अंदर एनक्लोज किया जाता है, एक लिथोट्रॉप्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो फिर वहां पे उसको एक्सरेज की हेल्प से हिट करता है उसको स्टोन को, और बाद में फिर उसको एक्सक्रीशन सिस्टम से निकाल
देते हैं।
डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों ही प्रोसेस में उसको यूज किया जाता है। तो इसके बड़े वाइड यूज हैं, बहुत वाइड यूज हैं इन सब चीजों के।
एंड राइट नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कांसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप जैसे पहले की बताए कि एक पॉइंट को लोकेट करने में, अभी पॉइंट मे बी इन द टू डायमेंशनल मे बी थ्री डायमेंशनल, हम अभी आज का डिस्कशन ये टू डायमेंशनल में रखते हैं।
ओके,
सो जैसे एक पॉइंट को कैसे हम लोकेट कर सकते हैं, जैसे आप बताए कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको हम कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे।
एक प्लेन के अंदर जब हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो उस प्लेन सरफेस को हम दो परपेंडिकुलर लाइंस की हेल्प से फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं,
क्वाड्रेंट,
वन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, यानी चार इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया। और हर एक क्वाड्रेंट के अंदर जहां पर वो पॉइंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इस ओरिजिन को हम अब राइट साइड पे, जैसे हम नंबर लाइन पर करते हैं, हम पॉजिटिव यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड पर हम उसको नेगेटिव यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन है हमारी, उसमें जो अबव जो ओरिजिन है उसको हम पॉजिटिव यूनिट्स में, और जो बिलो ओरिजिन है उसको नेगेटिव यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाली इस वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहला कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर एक प्लेन के अंदर है तो सर्टेनली वो किसी ना किसी इन चारों क्वाड्रेंट्स में लाई करता है या इन दोनों एक्सिस के ऊपर लाई करता है, क्योंकि पूरा प्लेन फोर क्वाड्रेंट्स में और इन वर्टिकल लाइंस में डिवाइडेड है। तो प्लेन किसी भी पॉइंट के लोकेट करने की टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर इट विल लाई ऑन सम एक्सिस और इट विल लाई इन सम क्वाड्रेंट। तो जब हम राइट हैंड पर एक्स एक्सिस पर और अबव ओरिजिन हम वाई एक्सिस पर जाते हैं तो वो दोनों ही तरफ हमारी वैल्यूज जो हमने पुट की हुई हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो तब हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है कि अगर पॉइंट इसमें है तो हम उसकी दोनों वैल्यूज को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव कंसिडरेशन देते हैं,
मतलब उनका वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा
जी। और जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स एक्सिस पर हम लेफ्ट पे जाना पड़ेगा हमें और वाई पे ऊपर की तरफ, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे वो दोनों वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने पे वो वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास आती हैं। जब हम किसी भी पॉइंट को हम लोकेट कर रहे हैं तो हम उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब उस पॉइंट पर से एक्स एक्सिस पर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जितनी भी डिस्टेंस हमारे पास आती है दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, और वी से दिस इज एब्सिसा। लाइकवाइज वी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एंड द डिस्टेंस व्हाट इट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट, और वी से इट इज ऑर्डिनेट। सो बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मेड विद द हेल्प ऑफ टू पर्टिकुलर क्वांटिटीज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। से अगर ये एक्स डिस्टेंस कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर और वाई डिस्टेंस कट कर रहा है वाई एक्सिस पर एक्स एक्स एक्सिस पर, देन एक्स कोमा वाई जो एक ऑर्डर्ड पेयर है एनक्लोज्ड इन ए ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हमें ये पता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, और फिर जहां पर वो है उस पर्टिकुलर पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज एग्जैक्टली द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट।
जैसे आप बताइए हमको पॉइंट पता होगा तो वो कौन सा पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा ये हमको पता हो जाएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल -2, -3
की अगर हम बात करेंगे
ये अभी ऑफकोर्स तो, ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में।
देखिए -2, -3 की जब हम बात कर रहे हैं तो -2 उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, और -2 एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर यानी एक्स एक्सिस पर जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो हमें लेफ्ट साइड पर जाना पड़ेगा। तो एक्स एक्सिस पर हम ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि पॉजिटिव है तो वाई पर हम अबव ओरिजिन जाएंगे, तो नेचुरली ये -2, -3 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा उस केस में।
सिमिलरली थर्ड वाला रहेगा आपका -, फोर्थ वाला पूरा। और एक जहां पर कंफ्यूज इन जनरल स्टूडेंट लोग होते हैं, हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो रहे थे, जैसे आप बताए कि 50
यस
ये सडनली दिमाग को नहीं आता है कहाँ रहेगा कहाँ।
देखिए हमने बिगिनिंग में कहा कि किसी भी पॉइंट की एक प्लेन के अंदर जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो ये हैं कि या तो वो क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई करेगा या वो किसी ना किसी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। जब वो किसी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अगर वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है इट मींस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, इफ इट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, मींस व्हेन आई एम सेइंग इट इज 5, 0। तो 5 जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर है, तो जब मैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जाऊंगा 5 यूनिट्स, उसके बाद मैंने कहा है कि ये 0 यूनिट है वाई एक्सिस पर, तो इसका मतलब मैं वाई एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं वहीं एक्स एक्सिस पर ही खड़ा हूं जहां तक मैं पहुंचा हूं, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी 50। तो जब हम 50 कह रहे हैं तो इसका मतलब सिंपली कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और पॉजिटिव साइड पे 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। लाइकवाइज सपोज आई से 0, -3, तो 0, -3 का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करेगा क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और -3 है, तो मुझे
नीचे वाला बिलो
ओरिजिन आना पड़ेगा 3 यूनिट्स तक। तो 0, -3 विल लाई ऑन बिलो ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस एट 3 यूनिट्स
एग्जैक्टली। और हम ये आइडिया मिला कि एक पॉइंट का कैसे लोकेट करना है कोऑर्डिनेट, और दो पॉइंट है सपोज एक क्वाड्रेंट में दो पॉइंट है उनका बीच में डिस्टेंस हम निकालना चाहते हो।
हाँ, वी हैव टू फाइंड दिस। दोनों पॉइंट चाहे सेम क्वाड्रेंट में हो, चाहे किसी भी डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो, चाहे वो एक्सिस के ऊपर हो या कहीं भी हो, हम उनके डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम से उससे।
That is your familiar known distance formula.
Yes, yes. Popularly we call distance formula in mathematics. And when we assume that the in general that x1 comma y1 is coordinate of one point and x2 comma y2 is coordinate of another point, in that case this formula moves as square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. See, it is always considerable के जब हम square root ले रहे हैं तो कई बार लर्नर्स को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम इस बात को ना सोचें कि अगर मेरे पास अंडर रूट 25 आ गया तो मैं उसको प्लस माइनस 5 लिख दूं। अंडर रूट 25 इज ऑलवेज 5। डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो डिस्टेंस को हम जब भी लिखें हम केवल उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ही लिखेंगे। अंडर रूट 25 को हम कभी भी प्लस माइनस 25 से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपने आंसर को। अंडर रूट 25 हैज टू बी रिप्रेजेंटेड ओनली 5।
I mean, as it is refers to distance between the two points.
Yes.
That's why it is positive. It
yes, may, yes,
cannot
yes.
Negative value.
Yes, yes.
Exactly. और जैसे एक बात पता है कि दो पॉइंट दो दूसरा क्वाड्रेंट में रहेगा उसका भी सेम फार्मूला रहेगा।
हाँ, as I have told you in beginning of this formula, दोनों पॉइंट चाहे सेम क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेम एक्सिस में हो, चाहे डिफरेंट एक्सिस में हो, चाहे डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो, कहीं पर भी हो, जिस प्लेन के अंदर वो पॉइंट है अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो हमें इन x1 y1 और x2 y2 को रिप्लेस करना होगा हमारे जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं गिवन पॉइंट्स के, और हमारे पास इसी से उसका डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट हो जाएगा।
एक एग्जांपल सर बता दीजिए।
सी देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिया 4, 5, दिस इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ आई एम टेकिंग अगेन ए पॉइंट, वन इज 4, 5 and another point is 1, -1, 7 suppose.
Yes.
So when I put it in this formula, I will find it square root of x2 minus x1 means -1, -4 ka whole square plus 7, -5 ka whole square. -1, -4 I find that is -5. So my what I am getting, -5 square plus 7, -5 means 2 square and it's square root. So minus 5 square is 25 plus 2 square is 4. As a total I get 29 and it's a square root. So distance between 4, 5 and -1, 7 I find it as square root of 29.
Exactly.
Under root 29 is the distance between the two points.
Exactly. Right now we will be discussing that is very familiar in coordinate geometry, that we are talking section formula.
Yes, yes.
That means एक ratio में divide कर रहा है, तो उनके लिए कैसे हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला। और उसका केस में दो केस आता है, जैसे इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन।
यस यस। सी देखिए, मेरे पास अगर दो पॉइंट हैं, वन पॉइंट इज एक्स वन वाई वन एंड अनदर पॉइंट इज एक्स टू वाई टू, दीज टू कोऑर्डिनेट ऑफ दीज टू पॉइंट्स आर अवेलेबल विद मी एंड अनदर वन पॉइंट इज देयर, दैट पॉइंट डिवाइड्स दीज टू पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर पॉइंट्स इन एम रेशो एन सपोज for example. So in this case I want to find out the coordinates of this point which is dividing the distance a b suppose in a particular ratio m ratio n. If coordinates I assume for this point they are x comma y, then we can find out the value of this x comma y as x equal to m1 m x2 plus n x1 upon m plus n. Here m ratio n is the ratio in which point is dividing this distance AB and x1 y1 and x2 y2 are the coordinates of the two particular points. Like the same way y coordinate we can find as my2 plus ny1 upon m plus n, that is coordinate of x comma y, and these are the coordinates what we can find out for the point which is dividing in m ratio n. For example, I am finding out that one point is 2, 3 suppose. Another point is suppose 6, 8 and this distance is divided by a particular point P suppose in 2:3. Then coordinates of point P, it will be x equal to m into x2 means 2 into 6 plus 3 into 2 yani n x1. divided by m plus n, yani 2 plus 3. So what I get? 2 6 are 12 plus 3 2 are 6. 12 plus 6 is 18. 18 upon 2 plus 3 means 18 upon 5. 18 upon 5 is the x coordinate of a point which is dividing. Then for y coordinate, I get it in the same way. 2 into 8 means 16 plus 3 into 3 means 9 upon 2 plus 3 again means 5. So 16 plus 9, 25, 25 upon 5. So I get y coordinate as 5. But in some of the cases, we also get a problem which is reverse of this one. Means if it is given to us that coordinate of this particular point are 8 upon 5 comma 5. Means I am repeating the problem. There are two points having coordinates as 2 comma 3 and 6 comma 8. And a point is dividing this particular, a point is there whose coordinates are 8 upon 5 comma 5. And then question is, in what ratio this particular point is dividing this AB?
ये मतलब है अगर reverse पूछेगा फिर उनका ratio हम निकाल सकते हैं।
हाँ तो हमें उनका ratio तब find करना पड़ेगा। अब हमें point के coordinate given है और ratio हमें find करना है। Important बात क्या है कि जब हम ratio find करते हैं तो हम इस ratio को हमें assume करना होता है।
Take it x and y।
हाँ तो जो ratio हम यहाँ पर formula में m ratio n हमने use किया था formula में, हम इस रेशो को बजाय m और n ना यूज करने के हम इसको k is to 1 में यूज करते हैं। बेनिफिट हमें ये रहता है कि जब हम सॉल्व करते हैं उसको रिलेशन को तो हमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है k की। अगर मैं इसको m और n दोनों में यूज करूंगा तो तब मेरे पास टू वेरिएबल्स में टू डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी और एक एडिशनल काम मेरे लिए बढ़ जाएगा कि मैं फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करूं तब मेरे पास m और n का वैल्यू आएगा। बट इफ आई एज्यूम इट इन रेशो k रेशो 1 then simply I will get the value of k. If k I am getting suppose 2 upon 3, then sir, it is obvious that ratio is 2 ratio 3. But if value of k is suppose 3, then also it is obvious that ratio is 3 ratio 1. Means 3 will be written as 3 upon 1. This is one case of section formula. But there is...
you are talking this internal division.
Yes, this is internal division. When this dividing point is lying in between A and B, x1, y1 और x2, y2 के बीच में ये पॉइंट कहीं लाई कर रहा है। But there is an hypothetical situation कि ये पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर AB के बाहर भी कहीं लाई कर सकता है।
ऐसे है सिचुएशन कहाँ?
Yes, ऐसा सिचुएशन बनता है कि एक स्ट्रेट लाइन है AB और उसी स्ट्रेट लाइन पर AB के आउटसाइड एक पॉइंट आता है कहीं P। अब जब हम ये कहते हैं कि ये P पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है तो ये इट लुक्स सम वेरी रिडिकुलस थिंग कि जब P जो है वो AB के बाहर है तो वो AB को कैसे डिवाइड कर सकता है। बट इट इज इन मैथमेटिक्स इट इज एन हाइपोथेटिकल आइडिया और हम कहते हैं कि ये P पॉइंट जो है ये इस AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। उस केस में क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो रेशो है जिसको पहले हमने PA रेशो PB कहा था, अब हम उस रेशो PA रेशो PB को कहां से कहां तक लेंगे। PA रेशो PB अभी भी वही आएगा कि P से A तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी टेकन एज PA एंड पी से बी तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी टेकन एज पी बी। सो पी ए विल बी टेकन एज एम एंड पी बी विल बी टेकन एज एन एंड द रेशो विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज एम रेशो एन एंड इन दैट केस फार्मूला विल ऑल्सो हैव ए लिटल चेंज। इन अर्लियर व्हेन इट वॉज इंटरनल डिविजन वी वर सेइंग दैट एक्स वॉज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन एंड वाई इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। It was the case of internal division. But when we are talking of a point which is dividing externally, this formula is a bit changed and it is then x equal to mx2 minus nx1 divided by m minus n.
Yeah, a key difference hai. In place of positive, it is now negative.
Yes, in both of the places, in numerator also and in denominator also, we get it as negative sign. In the same way for y coordinate also, we say my2 minus ny1 अपॉन एम प्लस एन। जो फार्मूले के अंदर डेटा का इम्प्लीकेशन है दैट इज सेम, जैसे हमने एग्जाम्पल लेकर के आप लर्नर्स को बताया था इंटरनल डिविजन के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एम एन की वैल्यूज को पुट करेंगे, देर विल बी नो डिफरेंस। डिफरेंस विल बी ओनली इन वन केस, अगर हमें कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें रेशो फाइंड करना है, उस केस में अगर के का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। Suppose I get the value of k as माइनस टू अपॉन थ्री। तो माइनस टू अपॉन थ्री का जो इंटरप्रिटेशन है, जो मीनिंग है, वो ये है कि ये पॉइंट उसको टू थ्री के रेशो में डिवाइड करता है। टू थ्री के रेशो में डिवाइड करेगा तो उसमें रेशो तो टू थ्री है न्यूमेरिकली, लेकिन वो जो माइनस साइन आ रहा है उसका मीनिंग ये है कि ये डिवीजन जो है ये एक्सटर्नल डिवीजन है, यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो ए बी के लाइन पर आउटसाइड लाइन कर रहा है उसको। सो इफ इट इज वैल्यू ऑफ के इज पॉजिटिव इट इज इंटरनल डिवीजन, इफ वैल्यू ऑफ के वी आर गेटिंग नेगेटिव देन इट इज एन एक्सटर्नल।
एक चीज आपको सर रिमाइंड करना चाहता हूँ कि जैसे हम एरिया ऑफ ए ट्रेंगल हम जो पढ़े थे सेकेंड लेवल में, वो टाइम में हम यूज कर रहे थे जैसे हीरोज फार्मूला, वेरी फेमिलियर फार्मूला हीरोज फार्मूला, एंड दूसरा है कि वी आर वेरी प्रोमिनेंट यूज दैट हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद या अभी हमको पॉइंट तीनों पॉइंट जैसे ट्रेंगल का तीन वर्टिसेस होता है, तीन ही वर्टिसेस का अगर हमको कोऑर्डिनेट पता हो गया हाउ वी लिव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल। ट्रेंगल मीन एनी काइंड ऑफ ट्रेंगल, इट मे बी आइसोस्केल और राइट एंगल ट्रेंगल।
देखिए उस ज्योमेट्री के अंदर जब हम एरिया की बात करते थे तो एरिया से हमारा मतलब होता था कि हमें डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स के अंदर उसकी साइड्स का लेंथ हमें पता होता था, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता था तो हम एक फार्मूला यूज करते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हम जो ट्राइंगल का बेस और उसकी हाइट होती थी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देते थे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता था। अपार्ट ऑफ दैट अगर वो स्केलेन ट्राइंगल होता था तो अभी हम हेरोन फार्मूला के जिसकी सर बात कर रहे थे, हम उस फार्मूले को यूज करके यानी स्क्वायर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते थे। बट हियर इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाउ वी आर नॉट हैविंग द डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल और वी हैव रिप्रेजेंटेड पॉइंट इन ए डिफरेंट वे नाउ। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंटेड है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो इन दैट केस वी हैव टू इवॉल्व सम फार्मूला यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। एंड इन केस ऑफ ट्राइंगल इफ थ्री कोऑर्डिनेट थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री डिफरेंट पॉइंट्स यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स एक्स वन कोमा वाई वन फॉर वन पॉइंट, एक्स टू कोमा वाई टू फॉर अनदर पॉइंट एंड एक्स थ्री कोमा वाई थ्री फॉर द थर्ड वर्टिसेस। In that case, this formula used to be what we imply here, that is 1 by 2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2. And whatever the value we get, it may turn out positive or negative. But as we know that area of any type of figure, it can never be negative. So if we are getting negative also, in that case also we have to take only absolute value of that. So area हमेशा positive होता है, और इस formula को याद रखने का एक थोड़ा सा एक system भी learners बना सकते हैं कि 1 by 2 और bracket के अंदर जब हम लिखना शुरू करते हैं so we write it in this way कि x then in bracket y minus y plus x then in bracket y minus y plus x then in bracket y minus y and then we put the 1, 2, 3 in a cyclic order. Means 1, 2, 3, then for the next term we write it 2, 3, 1, plus for the next term we write it as 3, 1, 2. And again we get the same formula x1, y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y3. Whatever the calculation, after calculation we get, that is the area of the triangle. Again I repeat, हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव ही आ रहा है तो भी हम उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट वहां पर भी था जिसको हमने स्टडी किया था, दैट वाज अबाउट द कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। एंड इन यूक्लिड्स ज्योमेट्री ऑल्सो वी हैव लर्न इट दैट इफ थ्री पॉइंट्स आर देयर ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन नो ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। And if no triangle is formed and we say that there is a triangle, then we say that area of such triangle is zero. So for proving the collinearity of the point in Euclidean geometry also, we used to prove that three points are collinear if area of the triangle made by these three points is zero. The same concept is also used here when we prove that three given points are collinear, then using these three points as vertices of a triangle, we find out area of the triangle and if this area of triangle we find as zero, we say that three points are collinear or say they are lying on a straight line.
ये सो ये कॉन्सेप्ट है कि कोलिनियर हम जब वही बोलेंगे जब तीनों पॉइंट सारे एक लाइन का ऊपर रहेंगे,
एक लाइन के स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेंगे।
नहीं, जैसे आप बताए कि एरिया ऑफ ट्रेंगल जैसे तीनों वर्टिसेस हुआ उनका जीरो कौन सा सिचुएशन में मिलेगा?
देखिए, तीन पॉइंट अगर एक लाइन पर नहीं है, थोड़ा सा भी तीनों में से एक भी पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन से इधर उधर हट गया है थोड़ा सा भी, देन इट इज पॉसिबल टू मेक ए ट्राइंगल।
ऑफकोर्स,
और अगर ट्राइंगल बन गया तो नेचुरली उसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा फिर। और अगर ट्राइंगल बने ही ना, यानी तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। और अगर ट्राइंगल नहीं बना तो हम दूसरे वर्ड्स में इसको क्या कहेंगे कि अगर ट्राइंगल बना तो उसका एरिया क्या था? जीरो था। तो जीरो एरिया होने का मतलब है कि ट्राइंगल फॉर्म नहीं हुआ। ट्राइंगल फॉर्म नहीं होने का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर जरा सा भी एक स्ट्रेट लाइन से कोई भी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इसका मतलब ट्राइंगल बन जाएगा, और जीरो आने का मतलब है ट्राइंगल नहीं बना। ट्राइंगल नहीं बना इट मींस पॉइंट क्या है? लाइन के ऊपर।
तो यही है कि हम ये बात है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल।
हाँ, नॉट ओनली एरिया ऑफ ट्राइंगल बट एनी पॉलीगन,
क्वाड्रिलेटरल्स, एनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
देखिए, हमारे पास किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो वर्टिसेस को, अपोजिट वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन कर देंगे
इट बिकम,
वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। सो एवरी क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ट्राइंगल्स, और उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम इस फार्मूले को यूज करके फाइंड कर लेते हैं, उसको ऐड कर।
आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर को हमको एरिया निकालना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है, एंड जहां पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके हम उसका निकाल सकते हैं, कोई एरिया निकाल सकते हैं।
एक्चुअली यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना हमारे लिए उन फार्मूलों की हेल्प से आसानी से हो जाता था, बट वेन वी टॉक रेंडमली अबाउट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल
वो टाइम में प्रॉब्लम होगा।
यस,
बिकॉज उनका उसका वेदर इट इज ए पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम तो हमको पता नहीं है, तो उस टाइम में दिक्कत है थोड़ा निकालने के लिए। सो दैट प्लेस वी हैव टू यूज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सो दैट इट विल इजीली टू फाइंड आउट दिस थिंग।
उस सिचुएशन में अगर क्वाड्रिलेटरल हमारे पास उस तरह से डिफाइंड नहीं है कि पैरेललोग्राम या ट्रेपेजियम नहीं है, तो उस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया वहां पे निकालना हमारे लिए मुश्किल काम है।
Exactly.
लेकिन यहाँ पर ये बहुत आसान है क्योंकि हम उसको स्प्लिट करके दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं और उन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर देते हैं।
एग्जैक्टली, एंड नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स लाइन दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन और दैट इज कॉल्ड इंक्लिनेशन एंगल फॉर्मेशन बिटवीन द टू लाइंस।
सी, देखिए, इंक्लिनेशन बेसिकली रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ एन एंगल। एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर जो इंक्लाइनेशन है उसके मेजरमेंट को हम एंगल बोलते हैं, और इस एंगल को अगर किसी नंबर की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं देन वी यूज टू से दैट इट इज स्लोप ऑफ ए लाइन।
एग्जैक्टली,
और स्लोप को हम इस तरह से भी देखिए देख सकते हैं। हमने कभी देखा होगा जैसे हमारे घर में हम बाहर से अगर हमें स्कूटर को अंदर चढ़ाना होता है तो स्कूटर को अंदर ले जाने के लिए जब वो थोड़ा अप डाउन होता है तो हम एक स्लोपी वे बना देते हैं वहां पर,
इजी से उठा सकते हैं।
उस स्लोप के ऊपर फिर आराम से हम उसको ड्राइव करके अंदर ले जाते हैं। बेसिकली स्लोप इज द एंगल ऑफ दैट अपर सरफेस विद द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वो एंगल ही क्या है? सरफेस है। यहां पर हम इस एंगल को एक पर्टिकुलर नंबर की हेल्प से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इंक्लाइनेशन को, तो उस केस में हम ये कहते हैं कि ये एक लाइन का स्लोप है। बट बेसिकली What do we mean geometrically? Slope of a line is basically inclination of that line on horizontal. Horizontal के ऊपर दूसरी लाइन का जो inclination है,
angle,
that is defined as slope. And that we represent by a particular number which is assigned to that. And in two different ways in coordinate geometry, in two different ways we find out this slope. In one case, we use a trigonometric ratio, which is tangent, and in another case we use the coordinates of the two points. First we will talk about the coordinates of the two points. if one point is having coordinate as x1, y1 and another one is having coordinates x2, y2. In that case, slope is defined as y2 minus y1 divided by x2 minus x1. In the same way, this formula, we develop it from tan theta. In trigonometry, we have studied that tan theta is in a right angle, tan theta is perpendicular upon base. And when it is perpendicular upon base, in that case, this angle theta is the angle between hypotenuse and base of the triangle. So, in this particular situation, when we are talking of angle in a right angle about the line, we also find that angle is made between hypotenuse and base of that particular triangle, and that is defined as tan theta. So, in case suppose angle is 45 degree, then we say the slope is tan 45 and we know the value of tan 45, that is 1. So, we represent the slope in that case by a number 1. If this angle is suppose 60 degree, then the slope of that line is tan 60 means square root of 3. That is under root 3 is representing the slope of that particular line. But if the line is vertical, in case of vertical, we know that is 90 and we say that slope in this case is not defined. And in this case, when we apply this particular case in the another formula for finding the slope, m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, we find out that value of x2 minus x1 turns out to be 0. And we know that any number when divided by 0, it is not a defined number in mathematics because the operation division is not defined by 0. So, slope in that case, we say that it is not a defined.
और दूसरा बात है कि जब लाइन का बात हो रहा है, जैसे अगर टू लाइन है, हमारे पास टू लाइन है, एंड व्हिच कंडीशन वी से दैट दोनों लाइन पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेरी प्रोमिनेंटली वी यूज दैट वेदर टू लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, दैट इज कंडीशन, ऑन व्हिच कंडीशन वी सेफली कंक्लूड दैट टू लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर.
सी बेसिकली व्हेन यूजिंग स्लोप we define the relationship between two lines using the angle between them. In that case, when lines are parallel, we say the angle is 0 degree. And when they are perpendicular, the angle is 90 degree. When lines are parallel, it means these two lines are making the same angle with the third line. When we say it is x-axis, for example, in coordinate system, when it is x-axis and two different lines are making same angle with x-axis, then we say that they are parallel. And if the angles made by the two lines, they are same, suppose one is theta 1, another one is theta 2, then we will say the slope are m1 and m2 and their value is theta 1 and theta 2. So, tan theta 1 is equal to tan theta 2 because theta 1 and theta 2 are same. So, their slope will also be same in that case. So, if m1 and m2 slope of the two lines are same, then we say the lines are parallel. And in case of perpendicular, when product of these two slopes, m1 and m2, the slope of two different lines is equal to minus 1. Or say, the slope of one line is negative reciprocal of the
another line.
Then we say the lines are perpendicular. So, in this way, we find out the relation, these two particular standard relationship between the lines in terms of angle for the line.
Oh, that is true. But the thing is, before computing the parallel condition or perpendicular, the learners must have to know how to find out the slope of a line.
Definitely.
Otherwise, they cannot conclude whether
this
line is
perpendicular. No, it won't be possible without that.
Exactly. Now, we will be discuss on that is a locus of a point. That is, what are the different rule and principle for finding the equation of locus of a point?
Locus we have also studied in Euclidean geometry and that way we have defined locus in coordinate in Euclidean geometry, that was that any particular path or any particular figure which is made by a point under certain conditions, that was locus of the point. And the most popular example for locus was a circle. Jab hum ye kehte the ki ek particular point ka ek दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, इन दैट केस द फिगर मेड बाय दैट पॉइंट इज ए सर्कल, तो वो उसका लोकस है. लोकस मींस पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट इन ए प्लेन, एक कोई भी पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशंस एक प्लेन के अंदर अगर मूव करे तो वो पर्टिकुलर जो पाथ ट्रेस होता है उससे जो फिगर बनती है वो उस पॉइंट का लोकस होता है. डेफिनेशन ऑफ लोकस इज ऑल्सो सेम इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल्सो, बट द वे टू फाइंड आउट द लोकस इज ए डिफरेंट वन, बिकॉज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एवरी फिगर whether it is line, circle, parabola, ellipse, hyperbola, whatever it may be, they are represented by some algebraical relation between x and y, where x, y is a general coordinate of a general point on that particular figure. तो उस केस में हमें लोकस का इक्वेशन फाइंड करना होता है जो उस पर्टिकुलर फिगर को रिप्रेजेंट करता है जिस पॉइंट का वो लोकस है. तो लोकस फाइंड करने का एक जो वे आउट है या जो सिस्टम हम डेवलप करते हैं वो ये है कि सबसे पहले हम उस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं. लेट द पॉइंट पी हुज लोकस वी हैव टू फाइंड बी एच कोमा के, एंड देन यूजिंग द कंडीशंस विच आर गिवन इन अवर प्रॉब्लम वी फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एच एंड के, वॉट एवर इट मे बी. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए क्वेश्चन इज गिवन टू मी दैट फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच ऑलवेज रिमेन एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट 1, 2, यानी मुझे एक पॉइंट का लोकस चाहिए जो पॉइंट ए से या ओ से हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस 5 यूनिट्स पे रहता है. इफ आई एज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज लोकस वी हैव टू फाइंड इज एच कोमा के, इन दैट केस व्हाट कंडीशन इज गिवन टू मी, कंडीशन गिवन टू मी इज दैट दिस पॉइंट एच कोमा के इज ऑलवेज एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट विच इज फिक्सड 1, 2. So I will use a distance formula because distance is given to me. So using distance formula, I will write that 5 equal to under root h minus 1 whole square plus k minus 2 whole square. And squaring both of the sides, I get h minus 1 whole square plus y minus 2 whole square is equal to 25. And now at this stage, when we have simplified this particular expression, we replace h by x and k by y. So equation I get x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square equal to 25 is locus of the point which remains always at 5 unit distance from the fixed point 1, 2. That is the way we find out the locus.
And जैसे coordinate geometry में जैसे आपको conic section है, आपका straight line है, circle है, बहुत सारे चीज है. अगर हम स्ट्रेट लाइन बारे में डिस्कशन करेंगे, हाउ टू यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन.
देखिए पॉइंट के बाद यूक्लिड की ज्योमेट्री में भी अल्टीमेटली जो सबसे पहले फिगर हमारे पास आती है दैट फिगर इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स को एक प्लेन के अंदर अगर हम ज्वाइन कर देते हैं द फिगर मेड
दैट लाइन
स्ट्रेट लाइन. ओके, हियर इट इज रिप्रेजेंटेड इन ए डिफरेंट. First of all, we must know some basic idea about that. We must know at least two things. हमें दो information कम से कम चाहिए होती हैं एक straight line को find करने के लिए. एक तो उसकी location और एक उसकी direction. Location से हमारा meaning है कि हमें उस line के ऊपर एक कोई एक point ऐसा हमें पता होना चाहिए कि suppose मैंने एक vertical line ली. एक vertical line अगर मुझे केवल ये पता है कि इसका slope क्या है, vertical है, इस line cannot be a unique line. इस line को मैं shift करके कहीं भी ले जा सकता हूँ, ये हमेशा vertical रहेगी, तो unique line नहीं रही. बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं ऐसी, लेकिन अगर मैं इस बात को भी specify कर दूँ कि ये vertical है और एक particular point से pass भी हो रही है, then this line turns out to be a unique line. अब ये शिफ्ट नहीं हो सकती, ये एक ही लाइन ऐसी हो सकती है कि जो एक स्पेसिफाइड पॉइंट से पास भी हो रही है और वर्टिकल भी है. तो हमें दो चीजें हमेशा रिक्वायर्ड होती हैं, एक उसकी लोकेशन और एक उसकी डायरेक्शन.
फॉर एग्जांपल, डायरेक्शन इन द सेंस यू आर टॉकिंग व्हेदर इट इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन.
इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो, इसके अलावा भी हो सकती है. अ पार्ट ऑफ दैट, अगर सपोज मेरे पास किसी लाइन का लोकेशन है केवल, मैंने कहा कि ये ए पॉइंट से पास होती है, तो ए पॉइंट से बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन पास होती हैं, तो केवल लोकेशन के बेसिस पर भी लाइन डिसाइड नहीं होती. लाइन एक यूनिक लाइन डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक उसकी डायरेक्शन और एक उसकी लोकेशन. ये दो चीजें अगर हमारे पास होती हैं तो हमें एक यूनिक लाइन को फाइंड आउट करने की सिचुएशन में होते हैं, एंड इन दैट केस यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट और से लोकेशन बी डिफाइन द लाइन, या हम उसकी इक्वेशन
इक्वेशन हम
लिखते हैं उस केस में। एक बात बिगनिंग से क्लियर होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि स्ट्रेट लाइन हमेशा एक वन डिग्री का इक्वेशन होता है।
ऑफ कोर्स
स्ट्रेट लाइन
हमेशा, फिर ये भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, वन डिग्री स्टैंड फॉर व्हाट?
यस, देखिए वन डिग्री से हमारा मतलब होता है कि जब हमने किसी भी पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई किया है, एज्यूम किया है कि वो एक्स कोमा वाई है, तो इसका मतलब जो भी कोई रिलेशन हमारे पास आएगा एक्स में और वाई में, अगर उसमें एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर वन हो, तो उस केस में जो भी इक्वेशन हमारे पास आएगी इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए, दैट इक्वेशन विल बी ऑफ वन डिग्री। मींस बाय डिग्री वी मींस दैट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्वड इन द इक्वेशन दैट इज वन।
जैसे सर्कल में आएगा सेकंड डिग्री,
सेकंड
डिग्री आएगा,
तो लीनियर इक्वेशन जो होगी यानी वन डिग्री की इक्वेशन वो स्ट्रेट लाइन को
रिप्रेजेंट करेगा। ये हमको पहले से पता होना चाहिए, अदरवाइज ये बाद में फिर भी कंफ्यूज करेगा ये whether this is the straight line or circle or something। एंड जैसे हमको वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, उसको बारे में हम ब्रीफली वी विल टू समराइज दिस वन, दिस इज वेरियस।
देखिए सबसे पहली बात हमारे पास आती है जो सबसे इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं, एंड दीज आर द लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्सिस, वेदर इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज वाई इक्वल टू बी, वेयर बी इज एन न्यूमेरिकल वैल्यू। एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि लाइन एक्स एक्सिस पर अगर 5 यूनिट के डिस्टेंस पर पास हो रही है वाई एक्सिस के, देन इक्वेशन विल बी एक्स इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल। एंड इफ वी एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन दैट केस के वो अगर वाई एक्सिस पे सपोज फॉर एग्जांपल 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वी विल से द इक्वेशन इज वाई इक्वल टू 3। सो पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू ए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स वाई इक्वल टू बी, दीज आर द लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्सिस वेदर इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देन द वेरी फर्स्ट फॉर्म वी कम अक्रॉस दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड इन दैट केस द डेटा इज विद अस, दैट इज के स्लोप ऑफ द लाइन इज एम सपोज, एंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन वाई एक्सिस। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के ऊपर सी इंटरसेप्ट कट करती है, सी लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती है सपोज, और उसका स्लोप एम है, देन इक्वेशन और द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज स्लोप ऑफ द लाइन एंड सी इज द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन वाई एक्सिस। इन द सेम वे द नेक्स्ट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म
ये की बात है कि स्लोप का बात जो आता है, स्लोप स्टैंड फॉर एंगल, हियर यू आर रिप्रेजेंटिंग
एग्जैक्टली एंगल इन द टर्म ऑफ रियल नंबर।
यस ऑफ कोर्स इट इज द रियल नंबर।
यस
जैसे 45 डिग्री और 30 डिग्री, 45, 46 व्हाटएवर इट मे बी, इट इज द इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर।
यस टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज वी हैव डिफाइंड एज स्लोप। सो इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आफ्टर दैट वी से पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मींस पॉइंट ऑन लाइन इज गिवन टू अस एंड स्लोप इज गिवन टू अस। सो इफ पॉइंट ऑन एनी लाइन इज एक्स वन कोमा वाई वन एंड स्लोप इज एम, देन वी फाइंड आउट द स्लोप एज एम इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, एंड वेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इन दैट इक्वेशन वी फाइंड वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। द नेक्स्ट वे द इन्फॉर्मेशन कुड बी विद अस द इंटरसेप्ट फॉर्म, means if a line makes intercepts on both of the axes, suppose on x axis it makes the intercept of length a unit and it makes a intercept on y axis of length b unit, then we write the equation as x upon a plus y upon b equal to 1. If two points are given on the line, then simply m means slope is replaced by y2 minus y1 upon x2 minus x1, एंड इक्वेशन वी राइट एज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एंड वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म इज वी कॉल इट नॉर्मल फॉर्म,
दैट इज परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर फॉर्म, एंड वी रिप्रेजेंट इट एज एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। हियर स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज पी,
उनका डिस्टेंस है
यस yes. और अल्फा जो है दैट इज द एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस, यानी हमने ओरिजिन से लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस परपेंडिकुलर की लेंथ पी है और इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल अल्फा है। इस केस में लाइन का इक्वेशन एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं, दैट पर्टिकुलर फॉर्म इज नोन एज पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का सबसे बड़ा यूज ये है कि जब हमें किसी पर्टिकुलर फिगर के ऊपर हमें एक जनरल पॉइंट लिखना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। एंड इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू आर। इसको यूज करके अगर मुझे कभी भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट एज्यूम करना है अपने पार्ट पे तो उसको हम इसको यूज करके एज्यूम कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर दैट दीज ऑल दीज स्टैंडर्ड फॉर्म्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू ईच अदर।
That means you, अगर स्लोप इंटरसेप्ट है हम उनको पॉइंट स्लोप पे कन्वर्ट कर सकते हैं।
जनरल फॉर्म जो एक लाइन का होता है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं इसको वाई के टर्म को छोड़ के बाकी सबको लेफ्ट राइट साइड पे ले जाऊं इक्वेशन के और वाई के कोफिशियंट से मैं डिवाइड कर दूं, इट विल बी इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, मीन्स द लाइन कन्वर्ट्स इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में सी को राइट साइड पे ले जाऊं वो माइनस सी हो जाएगा और फिर इस इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड कर दूं तो एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस बी अपॉन सी इक्वल टू वन इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में अगर मैं पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें अल्फा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा का वैल्यू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी का वैल्यू जो है वो सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से इन सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स को
वन कैन कन्वर्ट टू एनी अदर फॉर्म आल्सो,
जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं।
और उसको बाद स्ट्रेट लाइन का और कुछ इम्प्लीकेशन है जैसे डायरेक्टली इम्प्लीकेशन?
देखिए स्ट्रेट लाइन के डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, स्ट्रेट लाइन क्योंकि सबसे एक बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर है, बाकी जितनी भी फिगर्स जनरेट होती हैं वेदर इट इज एंगल ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल वो सब की सब इसी से जनरेट होती है। तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर एक जगह पर इन्वॉल्व होते हैं।
ऑफ कोर्स जैसे आपको ये जो स्ट्रेट लाइन बारे में हम पढ़े ये हमारा जो नेक्स्ट सर्कल बारे में और जैसे कोनिक सेक्शन पाराबोला हाइपरबोला एनी पार्ट वी आल्सो यूज दैट कांसेप्ट
वी कैन यूज।
लर्नर्स जैसे हम आज डिस्कशन किए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन योर मैथमेटिक्स। यू नो अगर हम तुम्हारा मैथमेटिक्स कोर्स को हम देखेंगे 1/4 जो लोड है कंटेंट लोड है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना इसलिए देना पड़ेगा इट इज ऑल्सो न्यू फॉर यू। Earlier it was not there. Earlier you are within geometry concept and you have now moved towards coordinate geometry. उसको बहुत importance देना है and it is very related in your own future courses also. And हम जैसे coordinate geometry में दो concept आज कवर किए जैसे point का position कैसे निकालना है and दूसरा बात है straight line, equation of straight line and very important concept you must have to remember. That equation of a straight line must have in a 1-degree form and linear equation form. And दूसरा बात है कि various standard forms of straight line and one standard form can be converted into another forms and will be next discussion will be moved towards circle about circle. Thank you learners.